ये सभी साथी और ये परंपरा सारी हमारे घर में कई साल में कई पता यही पता हम सात है ये है सात है हम भगवान के
अरे जब मैं मरने लग गया हूँ बच्चे लोग वैसे ही शब्द होते हैं दीनता पूर्वक कहे मैं अप्रकट जब होने लगूंगा ये नहीं कहेंगे क्यों अपने को ऐसा ही दीन ही मानते हैं मैं जब मरूंगा बच्चों का मरना नहीं बच्चे से करके जब नाता आज स्वामी को मरने से क्या कहूँगा कभी का अंतिम काम आने पर मरने से मरते मरीज से तू यदि मर भी जाऊँ मरना तो वही है तो मर भी जाऊँ तो कोई ईशा के कुंड में इस कुंड के तिरे ही जीव गोस्वामी खरु जीव पूरा कहा वहां पर जीव गोस्वामी प्यारी बचना हो और उनके सामने क्यों वो राधा की स्मृति दिया देंगे और उन्हें राधा जी का स्मरण करते 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 अपने प्राणों को ऐसे हो जाता ये साधारण लोगों के लिए संभव नहीं ये तो सदैव के जीवन जो भक्त हैं प्रेम जिनमें अब अंततः शब्द शुभ सत्व हो गया है ऐसे लोगों का किस प्रकार से रघुनाथ दास स्वामी जैसे देह प्राण समस्त इंद्रियों के द्वारा नियम पूर्वक अभिमान को छोड़ करके आमरण भजन का जो नियम है कैसा पाथर रेखा जैसे रघुनाथ के वही नियम नियम नहीं था उनके भजन का नियम पत्थर की रेखा है पत्थर के लगे मिल जाएगी किंतु उनके भजन की जो ये रेखाएं हैं जो नियम है अच्छा करीब करीब भी हम लोगों के लिए प्रदीप स्तंभ प्रदीप स्तंभ किस को कहते हैं लाइट समुद्र के किनारे लाइट पोस्ट होता है उसको देख करके जहाज अपनी दिशा को निर्देश करते हैं उसी करते हम लोगों के लिए आकाश समुद्र में भजन का एक प्रदीप स्तंभ वैसा ही हम लोगों को भी भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई भी संबंध नहीं है पढ़ाई लिखाई से कोई विद्वता इत्यादि नहीं कोई भी व्यक्ति यदि वैसे सदगुरु के पास आ सके और ऐसा भजन कर इसलिए भजन करने वाले के लिए बतलाए एकांतिक रूप में बद में ही बात करें एकांतिक रूप में उससे भजन में सहजी सिद्धि होती है इसलिए कि हम ब्रज के ही धाम के शरणागत धाम को मिट्टी पृथ्वी देश नहीं मानना चाहिए उनको बलदेव प्रभु का स्वरूप कृष्ण का विलास समझना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हम लोग मथुरा में रहते हैं मथुरा को कोई शहर स्थान हम नहीं मानते रोज प्रतिदिन उठ करके उनको प्रणाम करना चाहिए हम तो मथुरा के बहुत ऋणी हैं मथुरा में इतनी दिन रह करके दोषी थोड़ा सा भजन के लिए इसकी हाजिर है मथुरा की वजह से तो मथुरा जी कृपा करके अपना द्वार खोल करके पार्टी में वृंदावन में मथुरा जी कहे सवाई वास में बदन बाचा तो फिर मन सारा विधन सतत स्थान आशित आशित तनवा मोद के शरणागत जो शरणागत भक्त हैं यहाँ पर सब प्रकार के शरणागत भक्तों को भी कह रहे हैं जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी के और राधा कुंड के शरणागत हैं ये शरणागत और साधारण शरणागत है ना दोनों एक चीज नहीं है भजन नाज में ये सब समय ये चीज रखना चाहिए हमारी रक्षा का भार हमारे ऊपर नहीं है जैसे बिकी हुई गाय का पालन पोषण अपूर्व स्वामी नहीं करता जहाँ पर जिस खुटे पर बेच देते हैं उस व्यक्ति को गाय को सब प्रकार से पालन पोषण करने का उत्साह पाता है ऐसे हम भी जब अपने को शरणागत भक्त के रूप में कर्णागत जीव के रूप में कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया तो अपने लिए जीवता निर्वाह इत्यादि के लिए कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए यदि चिंता होती है तो समझो ये कर्णागत भक्त नहीं है कर्णागत भक्त नहीं है तो फिर भजन में प्रवेश क्या करेगा इसलिए सबसे पहले इस चीज को करना ये निश्चित रूप में उसको कि कृष्ण हमारा जरूर पालन करेंगे और पालन करने के लिए हमको दूसरे से कहने की कोई जरूरत नहीं है कृष्ण अवश्य हमें पालन होगा रक्षक से वो कृष्ण जरूर रखता है अवश्य नहीं बढ़ता इसलिए निश्चिंत होकर यदि ये दो बातें नहीं होंगी
हमारा पालन पोषण करने वाला वो व्यक्ति है, तब सबसे भावना इसलिए इस शक्ति को दूर करके आत्मा दूर करके वो आत्मा का जो कुछ है सब उनके चरण में सौंप करके सौंपे सौंपी
आत्मा
तुम्हारे चरण में सौंपिया
तुम्हारा
द्वारे
तुम्हारा
द्वारा उसी तौर पर करके भजन करके जो फिंग बिंग करवा दे उसी से ही हमारा भजन
करेगा
इस भावना से भजन करना चाहिए। सबको यह हम कहा ये अनंत दूर नहीं आएगा तो वही बात की थी मैं तुम्हारा हूँ मैं तुम्हारा हूँ तवई वासी तवई वासी न जीवामी प्रयाग ने केवल मुख्य नहीं काज से हूँ यह बोलते हुए बाचा वचन के द्वारा इसको बोलते हैं तो फल मन का विधन मन के द्वारा भी ऐसे ही भावना था मैं तुम्हारा हूँ मैं तुम्हारा हूँ मैं तुम्हारा हूँ शरीर के द्वारा मुख के द्वारा भी बोले और मन में भी ऐसी भावना रखे और रख करके विधन तत् स्थान आकृत उनके ही स्थान अर्थात राधा जी का स्थान वृंदावन राधा का निशान कुंड गिर राज ये सब उनका स्थान बताना है नंद गांव है ये सब उनके स्थान है। ललिता कुंड देखा ना कितना सुंदर मनोरम से कदम कितना सुंदर है अभी इस समय में इतना सुंदर मनोरम तो कृष्ण लीला के समय में कैसा होगा इसलिए धाम ही उतरते हैं अभी धाम है हमारे किस रूप में दृश्यमान के रूप में है अभी वो सब नहीं दिखाई देते तो है उनमें सबके इसलिए स्थान आश्रित स्वम के साथ शरीर के साथ मन के द्वारा सब किस चीज के द्वारा मोदी शरणार सब समय आनंदित रहते हैं यदि ऐसा भजन करें इसलिए उस स्थान को और उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करते वहां पर है कैसे उन लीलाओं को स्मरण करता है उनके उनके चरणों में शरणागत होकर मैं आपका दास हूं इस प्रकार मुख से पा करके मन में भी वैसी भावना रख करके उनके स्थानों को ग्रहण करके सब समय उन्हीं के गुणों की सब समय श्रवण करते हुए या चिंतन करते हुए उस स्थान में बात करते हैं इसका नाम है इसको कहते हैं वही शरणागत शाम को सर्वर्ग अधिक संसार है बाद में या मनुष्य उसके प्रत्याण के लिए कैसा करता है कोई उपाय जब नहीं देखता है तो भगवान के शरणागत होगा भक्त लोग ऐसा नहीं करते भक्तों को इसके लिए जरूरत है उनको केवल एकमात्र भक्ति प्रेमा भक्ति ऐसी चीजों को पाने के लिए उनके लिए शरणागत और साधारण साधक उसके लिए करते हैं मरते समय लोग भगवान को किस लिए पुकारते हैं किस लिए जब किसी प्रकार से उनकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता लाखों रुपये खर्च करके भी उसको जीवन दान नहीं दे पाते उनको बचा नहीं सकते डॉक्टर लोग फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब हमें करने का कुछ नहीं है अब जो कुछ संत लोग करते हैं उसमें क्या होगा तो उस समय में उसका धूम भी आ जाती है उनके पास नहीं जाते कभी आप तो उस समय में साधु संत लोग जाकर के वो प्राणी में छोटा है छठक छठक करता है साधु लोग देखते हैं और जैसा तुम्हारा कल्याण है कल्याण का तात्पर्य क्या मरोबा तो ये नहीं कहेंगे कहेंगे तुम्हारा कल्याण हो उन लोगों को जन्म महाराज दिया होगा और उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया या राधे कृष्ण सुना दिया इसलिए काम को इत्यादि सर्वर्ग इस संसार में रहकर के उनके अधीन होकर के और जब कोई किनारा नहीं मिलता है तो वो भगवान के शरणागत अंत में मुख से वो भी बिकरते नहीं किंतु पूर्व जन्म किंतु किसी असाधनों के समय से ये आने आती हो सकता है तो संत लोग भक्त लोग साधक लोग इस तरह से शरणागत होकर के निष्कपट होकर के भगवान का ये जो कहा गया है कहां से कहा गया जी गोस्वामी ने 64 प्रकार की भक्ति के जो अंग हैं उनका पुंखानुपुंख ये लिखा श्रवण किसको कहते हैं कीर्तन किसको कहते हैं गुरुकर्ण किसको कहते हैं गुरु सेवा किसको कहते हैं अब गुरु कहें उन्होंने श्रवण गुरु गुरु शिक्षा गुरु चैत्य गुरु महंत गुरु इस तरह का कितना विश्लेषण करके एक एक चीज का विश्लेषण भजन साधक जो साधक है उन सब चीजों को अच्छे तरह से जान करके ऐसे ही भजन करने की चेष्टा करें
महंत गुरु को विश्व कहा गया
महंत गुरु दोनों हो सकते हैं भगवत संबंध में जो शिक्षा देते हैं दीक्षा देते हैं शिक्षा दीक्षा गुरु एक भी हो सकते हैं ऐसे करते 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 जब प्रेम उपस्थित होगा प्रेम जीवन, तो वही साधक सदैव के जीवन हो जाएगा। शरणागति की अंतिम सीमा, अंतिम सीमा क्या है सदैव के लिए? पहले शरणागत था, ये उठते 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 ऊपर चला जाए, उस जाकर से जब प्रेम उत्पन्न होगा उसमें सदैव के जीवन, बिना उसके प्राणी निर्धार कर सकता। भगवान के भक्त जो होते हैं, कोई भी चीज होगी, कोई भी क्रिया होगी, जब देखेंगे भगवत संबंधित है तब से ग्रहण करेंगे। दो चीजें होते हैं, एक भगवत संबंधी है और दूसरा क्या होता है, भगवान के लिए। भगवान के लिए जो कुछ करते हैं भगवान के लिए,
भगवत
वो भगवान संबंधी और भक्त संबंधी सब एक में आए। वैष्णव करेंगे किस लिए का, भगवान के लिए या भगवत संबंधी के लिए, भगवत संबंधी और भगवान के लिए। भगवान के लिए ही सब उनकी क्रियाएं हैं, सोना उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ उनके लिए होगा। और संबंधी क्या है, संबंधी कृष्ण के कपड़े को बड़ी अच्छी तरह से लाभ प्यार से, मानो कृष्ण उनका पुत्र ही है, कृष्ण की बांसुरिया को जो राजी रखते, बल्कि कृष्ण से व्यापी उनके वस्तुओं को वहां पर। तो जहां राधिकारी का कृष्ण का धाम है, ज्ञान की लीलाएं है, ये क्या चीज है, कृष्ण संबंधी नहीं है उनके प्रति ऐसे अभाव श्रद्धा से। कृष्ण लिए तो होगा ही, कृष्ण के लिए माने यहाँ पर कृष्ण कृष्ण संबंधी जो भक्त लोग हैं वो सब कुछ लिए, और कृष्ण के लिए और कृष्ण संबंधी है। हम कोई भी चीज लेंगे ना, देखेंगे ये ठाकुर जी को अर्पित है कि नहीं, यदि नहीं है तो अर्पित होकर के उनका संबंधी बनाओ खाएंगे और सब उसे ग्रहण करो। कोई भी चीज हो ऐसे ही समझ बूझ करके करता नहीं, कृष्ण से जिस पशु का संबंध नहीं है, जिस व्यक्ति का कृष्ण से संबंध नहीं है उसे अपनी मित्रता मत करो, जो जितना दूर है उसे हम भी दूर रहेंगे। इस प्रकार से कौन कृष्ण के जो कवि हैं उसे हमारा संबंध है। ये सब भजन में बहुत विचार सुन करके करने, कोई चंका कोई भी विपत्ति कोई आपत्ति अथवा अनर्थ अपराध कभी भी नहीं है। यही रघुनाथ दास गोस्वामी की कर्म पराकाष्ठा करणागति सदैव के जीवन में, न जीवानी और कहते हैं आशा भरे अमृत सिंधु मई प्रसंग कालो मया के कविता के शांत कम संकेत पिता मई विभक्त से नहीं होती प्राणी यदेन परो बकार बकार बकार। हमें अपने प्राण लाभ रखने से कोई भी जरूरत नहीं, इस ब्रज में बात करने की कोई जरूरत नहीं, गिरिराज गोवर्धन के तक में बात करने की कोई जरूरत नहीं, हमको किसी भी यहाँ तक की किसी की जरूरत नहीं। यही उनकी शरणागति की कर्म सीमा है सदैव के जीवन। हम लोगों को भी जहाँ शासक से ऐसे भावों को ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए। देखो खाने पीने की कुछ चिंता नहीं है, यदि हम लोग मोर देखते हैं तो हृदय नाच उठता है कि नहीं, मोर है जैसे मोर नाचता है हृदय सुना, जिसको नहीं होता है वो समझे भक्ति नहीं है। ये गुंजा माला है ना, एक देखा है गुंजा माला को, निरस्त व्यक्तियों को इसे कुछ भी नहीं होगा, और जो फर्श है जो ऐसे संबंधित बस लेकर के अपने सिर पर या हृदय में धारण कर लिया, देखो एक साधारण चीज है। इसलिए ब्रज से संबंधित कोई भी चीज हो उनको ये सब लोग एक आदत से देते, कोई भी चीज एक गैया कहाँ की है ब्रज से आई है, कोई भी चीज हो ब्रज कहाँ आप कहाँ से आए हैं मथुरा ब्रज से आए, बस देखो जैसे वो पूजा साधारण सहज ये भक्ति का स्वरूप। बाहर में लोग क्यों आकर करते हैं ब्रजवासी, ब्रजवासी नहीं है झगड़ालू है उसे पैसे के लोभी हैं तो भी कहाँ कहाँ हैं ब्रज से आए, बस सुनते ही बस उनका हृदय ठीक हो जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। भक्तमाल ग्रंथ में उनके संबंध में लिखा कि खुदा कृष्णा और देहेंद्रीय व्यापार का रघुनाथ दास गोस्वामी में कुछ भी नहीं था, खुदा कृष्णा शोक मोह भय इत्यादि और अपने इंद्रियों के शरीर जो स्थूल शरीर के इंद्रियां हैं उसके लिए कोई भी चेष्टा उनके अंदर से नहीं थी। श्रीमान रघुनाथ दास जी गोस्वामी प्रचंड वैराग्यजार महाभक्त प्रेमी, अनुराग पराकाष्ठा राधा गोविंदे श्री राधा गोविंदे दीवानी की नहीं जाने मस्त प्रेमानंदे दिन रात प्रेम में मस्त रहते सोचने के बाद आया कि नहीं और सनातन गोस्वामी आए कि नहीं कुछ भी उनको पता है भजन में राधा कुंड किरे कर लेने बात दीवानी की सदा राधा कृष्ण प्रेम उल्लास सप्तम प्रेम में उल्लास राधा कृष्ण गुरु स्मृते मधुरा राधा कृष्ण गुणान सम्मोहितम वंदे हे राधे तुज वेद के चलंते हे नंद सुनो पता सिद्धोवर्धन कल्प पाद पटले कालिंदी वंदे सुता भोसंतार सर्व पौष्य दई महादेव मां विवल हो सक हे राधे हे लंके हे विशा के उनको समय है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करें उसने मेरी निंदा की उसने उसकी निंदा की उनको कहां अवकाश है ऐसे ही उनका चरण हम लोगों को अनुसरण करते तथा राधा कुंड श्री राधा कुंड सीरे कर लेने बाद दीवानी से सदा राधा कृष्ण प्रेमोल्ला यदि बाणी स्मृति है ना तो हाय है करते हुए रोते जब अंतर की स्थिति में तो प्रेमोल्लास उनको कुछ पता नहीं राधा कृष्ण प्राप्ति लागी सदा उत्कंठित कब उनकी कृपा होगी इसके लिए सब समय उत्कंठित सदा हाहाकार खने चीज नहीं सीखते एक क्षण के लिए भी चित्त सब समय हाहाकार है उनका उनको मैंने नहीं पाया उनकी सेवा नहीं पाई कब उनका दर्शन होगा कब उनकी कृपा मिलेगी बस इसी की चिंता और कोई खाने पीने की चिंता हे बृंदा वनेश्वरी हे ब्रजन आदि देखा ऐसी चरण रखो प्राण हो हे बृंदावनेश्वरी हे ब्रजनाग देखा ऐसी चरण राख मोर प्राण मोर रख निद्रा हार नहीं सदा करे कुत्ता निद्रा और हार नहीं निद्रा नहीं है आहार नहीं है सदा करे फुटका फुटकार मने बाह्य सुख नहीं सदा जिनो मतवा जैसे मतवा रात में हो जाता वैसे ही होती है बाह्य स्फूर्ति नहीं है प्राय सब अंतर स्फूर्ति और इस जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ करेंगे ब्रज से उत्पन्न मट्ठा ढोल गरी जो कुछ और वही की चीजों का व्यवहार करते हैं यही उनका संकल्प है ब्रज में रहूंगा ब्रज के चीजों का व्यवहार करूंगा ब्रज के भाव में सत्य में दिला ऐसा संकल्प और नियम के साथ में रगानुगा भक्तियों का भजन इहा कने स्वस्थ तुम्हें शरीरम स्वस्थिमासम विलयन से जाति अप्राप्त बोधि बहुकल्प दुर्लभान नैवासना काय मत चलिष्यते ये कह रहे हैं साधारण एक साधक गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध थे उनको कुछ मालूम नहीं होते मैं मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए बेटा जी से क्या करूं तो वो बुद्ध गया जो थे हमारे हमारे भगवत बुद्ध का जन्म
भजन बुद्ध
तो उनके स्थान पर गए और जाकर के बोधि मैंने पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे खाना पीना सब कुछ छोड़ करके अब चित्त को समाधि कार्य आप क्या करूंगा इसी वृक्ष के तले मैं बैठ करके अनाहार रहूंगा निद्रा नहीं होगी बिना सोए बिना खाए बिना पिए मैं सुख करके मैं मर जाऊं शरीर एकदम ऐसा हो जाए सुख जाए मैं मर भी जाऊंगा हमारा देह अस्थि मांस प्रवृत्ति समाप्त हो जाए किंतु मैं यहां से उठूंगा नहीं तो कुछ सिद्ध क्षेत्र का प्रभाव था इसलिए भीतर में कुछ थोड़ा सा हो गया किंतु गुरु के अनुगत में नहीं था वैष्णव नहीं थी इसलिए वो उपलब्धि नहीं है तो उनको ये हुआ कि संसार छूटा है भगवान नहीं है क्योंकि उनकी कृपा इतना दिन तक रह करके मैंने अनाहार रहा और इतना कठोर तपस्या की किंतु जब इतनी सस्ती जब भगवान नहीं मिले भगवान है और वेद सब इसीलिए झूठे हैं क्योंकि उस भगवान की बात कही गई है, किंतु उनके समझ में नहीं आई कि गुरु का अनुगत्य में भजन नहीं करने से ऐसे ही दूर होता है। इसलिए उन्होंने कहा भगवान नहीं है और ये सब झूठा ढकोसला वेद इत्यादि के ज्ञान है, बस निर्वाणी शून्य से हम आए हैं, शून्य में मिल जाएंगे, कोई कोई चीज ही नहीं है, जो चीज होती तो हमको मिलती उसमें, इसलिए शून्य में मिल जाएंगे, शून्य से सब निकलेंगे, ये शून्य ही सब बस इसी से मान सबको उन्होंने माना, इसलिए उनकी ऐसी दशा। एक साधारण साधक अपने इस ज्ञान के लिए इतना परिश्रम कर सकता है तो हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए कितना हम लोगों को साधन कठोर साधन करना चाहिए। इस तरह से आप दूसरे इसी तरह से प्रेम करके भजन करने की निष्ठा आगे Thank you.